Sarkozy. Da, no, così. Okay. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کے اندر ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیات کے اوپر جو ابھی تلاوت کی گئیں. تو ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا تو نے نہیں دیکھا. استفہامیہ ہے, سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور لم کا مطلب نہیں. تو علم کیا نہیں, ترا ترا کا مطلب آپ نے دیکھا یا تو نے دیکھا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ تو ادب کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں, ورنہ گرامیٹیکلی اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا, تو نے دیکھا. یعنی جب کسی ایک واحد مرد سے مخاطب ہوتے ہیں تو تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں. تو الم ترا انا ارسلنا الشیاطین, کہ بے شک ہم نے چھوڑ رکھے ہیں. ارسلنا کا مطلب ہم نے چھوڑ رکھے ہیں یا ہم نے بھیجے ہیں. جیسے رسول کو بھیجتے ہیں نا, ٹھیک ہے, رسول کے لیے کیا یہ ارسلنا, انا ارسلنا الیکم رسولا, رائٹ. تو رسول کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ارسلنا. ٹھیک ہے, تو بالکل وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یہاں پر دوسری سائٹ کے لیے, اپوزٹ سائٹ کے لیے. وہ کیا, ارسلنا الشیاطین, کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین, یعنی ہم نے بھیجے ہیں شیاطین. ٹھیک ہے, علی الکافرین, کافرین کے اوپر, یعنی جنہوں نے انکار کیا, جو کہ رد کرتے ہیں ہدایت کو, ٹھیک ہے, جو کفر کرتے ہیں, تو ان کے اوپر شیاطین بھیجے ہیں. تؤزہم عزا, وہ شیاطین کرتے کیا ہیں, عزہم تؤزہم, ٹھیک ہے, کہ وہ ان لوگوں کو ابھارتے ہیں, اچھالتے ہیں, بڑھاتے ہیں, رائٹ, انسپائر کرتے ہیں یا انسٹیگیٹ کرتے ہیں. ازن ابھارنا, تعزہم ازن, ٹھیک ہے, یعنی تاکید کے لیے ازن کا لفظ جو ہے وہ پھر سے استعمال کیا, ورنہ تعزہم کا لفظ کافی تھا. ٹھیک ہے, کہ وہ ان کو ابھارتے ہیں, لیکن وہ ان کو ابھارتے ہیں, ابھارنا یہ ایک طریقہ ہے عربی زبان کے اندر جس سے کہ بات کے اندر مزید ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے, تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ان کو خوب اچھے سے ابھارتے ہیں, خوب اچھے سے چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شیاطین کس چیز میں چڑھاتے ہیں, شیاطین جو ہے وہ نیکی کے اوپر تو نہیں ابھارتے نا, شیاطین جو ہے وہ خیر کے کام کے اوپر تو نہیں چڑھاتے نا. شیاطین کا کام کیا ہوتا ہے, جو شیاطین خود کرتے ہیں اسی کے اوپر ابھارتے ہیں, یعنی بغاوت کرنا, طغیانی کرنا, نافرمانی کرنا, ٹھیک ہے, حد سے تجاوز کرنا, یہ سارے کام شیاطین کے ہیں. تو یہ شیاطین خود بھی یہی کام کرتے ہیں اور کافرین کو بھی وہ اس کے اوپر ابھارتے ہیں, چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین. ٹھیک ہے, یعنی یہ شیاطین کا نظام ایسا ہے کہ نبیوں کو تو ویسے نظر آتا ہے یہ نظام. ٹھیک ہے, نبیوں کو تو شیاطین نظر آتے ہیں, جن, کیونکہ جن جو ہیں, یعنی شیاطین من الجنت والناس, یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو جو انسانی شیاطین ہوتے ہیں وہ वो तो वैसे ही नजर आते हैं, हमको भी नजर आते हैं,
हर
इंसान को इंसान नजर आते हैं, लेकिन जिन हर इंसान को नजर नहीं आते उनके जिन अंबिया को नजर आते हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को पता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम वाकिफ हैं शयातीन के निजाम से कि ये काफिरों को नाफरमानी के काम के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलम तरह का मतलब यह है कि क्या आप वाकिफ नहीं है कि शयातीन को हमने छोड़ रखा है इन काफिरों के ऊपर जो उनको नाफरमानी के काम के ऊपर उभारते रहते हैं। फला तअजल अलैहिम, बस नहीं जल्दी कीजिए इनके ऊपर, यानी इनके मामले में आप जल्दबाजी जल्दी ना कीजिए। ठीक है, क्या मतलब? सजा के लिए कि इनको जल्दी से सजा मिल जाए, ये ना कीजिए। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, इन्नमा सिवाय इसके नहीं के, ठीक है, इन्नमा का मतलब बेशक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेशक को बहुत ज्यादा यानी पक्का करने के लिए ना इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसके लिए इन्नमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बस यही एक तरीका है, यही एक मामला, यही हो सकता है कि यही है कि ऐसे भी आप तर्जुमा कर सकते हैं इन्नमा का। नउद्दु लहुम, हमने यानी हम अद्दा, या उद्दू का मतलब होता है अदद करना, अदद है ना, उर्दू में भी कहते हैं अदद, तादाद। ठीक है, तो नउद्दु लहुम, हम तादाद पूरी करते हैं इनके लिए, लहुम इनके, इनके लिए अद्दन तादाद पूरी करना। ठीक है ना, वही जिस तरह वहां अज़न था ताकीद के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर नउद्दू का लफ्ज काफी था, लेकिन ताकीद पैदा करने के लिए आखिर में अद्दन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया दोबारा से, नउद्दू लहुम अद्दन। ठीक है, यानी हम खूब अच्छे तरीके से इनका अदद पूरा करते हैं। अदद पूरा करने का मतलब क्या है वो तफसीर में पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बस अभी तो आप इतना जान लें कि अदद पूरा करना, नउद्दू हम अदद पूरा करते हैं, लहुम उनके लिए, उनके लिए से मुराद उनके मामले में हम अभी अदद पूरा करते हैं, काउंट पूरा करते हैं। यौमा नहशुरुल मुत्तकीन, यौमा जिस दिन, ठीक है, यौम का मतलब दिन होता है, लेकिन जब यौम का लफ्ज जुमले ये किसी ने गलती से म्यूट कर दिया था शायद इसको, अगर टीचर को म्यूट कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए। तो यौमा जब जो है ना जुमले के शुरू में आता है ना, तो ये एक कॉन्स्ट्रक्ट बन जाता है, मुदाफ मुदाफ इलेही का कॉन्स्ट्रक्ट बन जाता है। ठीक है, वो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि यौमा बोल करके अब बता रहे हैं कि इस यौम के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से ना उर्दू में जो ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो इस तरह करते हैं जिस दिन ये 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 सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब यौमा के बाद जो आ रहा है ना, वो सारे मामलात हैं जो कि इस दिन के अंदर होंगे। ठीक है, तो यौमा का तर्जुमा करेंगे जिस दिन, वरना अगर बिल्कुल अलग से लफ्ज यौम लिखा होता तो उसका तर्जुमा जिस दिन से नहीं करते, बल्कि क्या करते, दिन, यौम का मतलब होता है दिन। लेकिन जुमले में जब ये इस तरह से आ गया, शुरू में आ गया, तो करेंगे इसका तर्जुमा जिस दिन, क्योंकि अब बताना है कि क्या होने वाला है उस दिन। तो यौमा जिस दिन, नहशुरु हम जमा करेंगे, ठीक है, हम हशर करेंगे, हशर का मतलब जमा करना, अल्मुत्तकीना हम जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे मुत्तकीन को। ठीक है, इलर रहमानी, रहमान की तरफ। ठीक है, क्या मतलब कि इकट्ठा करके, हम इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है कि किसी तरफ आपको उनको ले जाना होता है, मकसद होता है इकट्ठा करने का ना लोगों को, तो मकसद क्या होगा इकट्ठा करने का कि रहमान की तरफ लेके जाना है। क्या मतलब रहमान की तरफ लेके जाना है, रहमान कोई एक सिमत में है या रहमान किसी जगह पर मौजूद है, بلکہ رحمان کی رحمت کی طرف لے کے جانا ہے. الر رحمان کا مطلب رحمان کی رحمت کی طرف لے کے جانا ہے, وفدن وفد کی شکل میں, جیسے کسی بادشاہ کے پاس کچھ لوگ وفد بنا کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وفد جو ہوتا ہے نا یہ بڑا عزت والا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عزت کے ساتھ جب کسی کو کہیں پہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے یا کسی کو بلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وفد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفد کی طرف وفدن وفد کی شکل میں, ونسوق المجرمین, اور مجرمین کو ہم ہانکیں گے. ہانکنا, اب یہ ہانکنے کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کے لیے, مویشیوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی عزت نہیں ہے. جبکہ نحشر وفدن یہ عزت والا ایک خطاب ہے, اور نسوق یہ بے عزتی والا خطاب ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ہانک کے لے کے جائیں گے مجرمین کو الى جہنم, جہنم کی طرف, وردن. وردن کا آگے اچھی تشریح آ رہی ہے, تو بس یہاں پر اتنا سن لیں کہ وردن کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر پیاسے سے کیا جائے گا, پیاس کی حالت میں. ٹھیک ہے, تو ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسی حالت میں ہانکیں گے. لا یملکون الشفاعت, وہ مالک نہیں ہوں گے. لا یملکون, ملکہ یملکو کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا. ٹھیک ہے, یعنی کسی چیز کا اختیار رکھنا, کسی چیز کے اوپر اتھارٹی ہونا, کنٹرول ہونا, اسی کو کہتے ہیں مالک ہونا. ٹھیک ہے, تو لا یملکون یعنی وہ لوگ مالک نہیں ہوں گے, وہ لوگ اختیار نہیں رکھیں گے. کس چیز کا؟ الشفاعت, شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, الا سوائے ان لوگوں کے, من اتخذا, جنہوں نے لیا ہے. اتخذا یتخذو کا مطلب ہوتا ہے لینا, ٹو ٹیک سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو من اتخذا جس نے لیا ہے, عند الرحمانی, رحمان کے نزدیک. عند کا مطلب ہوتا ہے نزدیک, پاس. ٹھیک ہے, تو رحمان کے پاس, رحمان کے نزدیک, عہدن, عہد, یہ وہی جس طرح اردو میں عہد ہوتا ہے یعنی وعدہ, کوئی پیکٹ, کوئی اگریمنٹ, کوئی کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہوا اس آیت کا کہ رحمان کے پاس شفاعت کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ معاہدہ کر لیا تھا شفاعت کرنے کا. کیا مطلب؟ کہ شفاعت تو لوگ کریں گے, انسان شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. شفاعت کرنے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے التجا کرنا کسی اور کے لیے, کسی اور کے لیے, اپنے لیے نہیں, کسی اور کے لیے کہ اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے, اس کو بخش دیجیے, اس کو جہنم سے نکال لیجیے, یا اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیجیے. یہ کسی اور کے لیے التجا کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ شفاعت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شفاعت, یہ صرف دنیا میں جیسے دعا کر رہے ہیں ہم کہ اللہ فلانے کو معاف کر دیجیے, فلانے کے لیے جو ہے وہ یعنی جہنم کا فیصلہ نہیں کیجیے, یہ شفاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دعا کا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کے لیے فیصلہ فرما دیں جہنم سے بچنے کا اس دنیا میں ہماری دعا کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, لیکن قیامت کے دن جو شفاعت کرنے والے لوگ ہوں گے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے, ان کی دعا کو رد نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شفاعت کا حق ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو کہیں گے نا کہ اللہ فلانے کو جہنم سے بچا دیجئے یا فلانے کو جہنم سے نکال دیجئے, تو ان کی بات مان لی جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کا حق دیا, اسی لیے دیا نا کہ جی وہ بولیں اور ان کی بات مان لی جائے. ٹھیک ہے, تو شفاعت جو ہے نا یہ دعا کرنے سے تھوڑا سا مختلف چیز ہے. اس دنیا میں تو ہم دعا کرتے ہیں, لیکن اس دنیا میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس کو شفاعت نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا, شفاعت جو ہے نا یہ آخرت کے لیے خاص ہے. ठीक है, वहां पर नबी अलैहिस्सलाम भी शफात करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम के जैसे जो लोग बने होंगे दुनिया में वो भी वहां पे शफात करेंगे। ठीक है, जैसे यानी नबी के बाद कौन होते हैं? औलिया, अल्लाह ताला के दोस्त। ठीक है, तो औलिया भी शफात करेंगे कयामत के दिन। तर्जुमे के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप बता दीजिएगा और हम खुलासा तफसीर शुरू करते हैं। तो इन्हीं आयात के खुलासा तफसीर में यानी मुख्तसर तफसीर जो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयान उल कुरान तफसीर के अंदर की, वो यहाँ पर हजरत लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, बयान उल कौसैन विद इन द ब्रैकेट्स। तो अंडरलाइन जो होता है वो तर्जुमा होता है और ब्रैकेट्स के अंदर मुख्तसर खुलासा तफसीर होता है। तो तफसीरन पहले लिखते हैं कि ये जो फरमान है अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तअज्जुहुम अज्जा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये जो बात कही इसकी वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम से ऐसे अल्लाह ताला यहाँ पर क्यों फरमा रहे हैं कि क्या आपने देखा नहीं कि हमने शयातीन को इनके ऊपर छोड़ा हुआ है जो इनको चढ़ाते रहते हैं गुनाह के कामों में। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? कहते हैं कि आप जो इनकी गुमराही से गम करते हैं, ठीक है, यानी ये जो सरदाराने कुरैश हैं, ये जो मुशरिकीन के चौधरी हैं, मुशरिकीन के जो हैं वो सरदार हैं, बड़े हैं, ये जो नबी अलैहिस्सलाम को शदीद कस्म की अजियत पहुंचा रहे थे जुबान से भी, हाथ से भी, है ना, और अपने अमल से भी ऐसे ऐसे काम करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को शदीद अजियत पहुंचे। ठीक है, जैसे कि अमल से अजियत करने का मतलब यहाँ पर क्या है? जुबान से अजियत करना, तो नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना, जादूगर कहना, मजनून कहना, दीवाना कहना, राइट, नाउज बिल्ला झूठा कहना। ठीक है, ये सब क्या है? जुबान से अजियत पहुंचाना। और अपने हाथों से अजियत पहुंचाना क्या मतलब? कि नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारना। ठीक है, पत्थर मारना, ये पत्थर मारते थे नबी अलैहिस्सलाम को। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो ऊंट की ओझड़ी ला करके, जब आप सजदे में गए, ऊंट की ओझड़ी, ये कितनी बड़ी होगी। अभी बकरीद थोड़े दिन पहले गुजरी है, जिन्होंने माशाल्लाह कुर्बानी करी होगी, इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, तो देखा होगा ना कि ये बकरे की ओझड़ी कितनी बड़ी होती है, और फिर बकरे से बड़ी गाय की ओझड़ी। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह गाय की खूब कुर्बानी होती है, तो देखा होगा गाय की ओझड़ी कितनी बड़ी होती है, कितनी हैवी होती है। और ऊंट तो गाय से भी डबल होता है या तीन गुना ज्यादा होता है। ऊंट की ओझड़ी कितनी बड़ी होती होगी? लार्ज इंटेस्टाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो वो ला करके नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दी, तो क्या हशर होता होगा? और ओझड़ी जो होती है कितनी नजस होती है, उसके अंदर तो यानी एक्सक्रीमेंट भरा हुआ होता है ना उसके अंदर, तो वो चीज ला के ऊपर डाल दी। तो ऐसे जो है वो जुबान से, ये हाथ से अजियत पहुंचाने का यह मतलब हो गया। जुबान से, मुंह से थूक फेंकना, ये भी जिस्मानी अजियत पहुंचाने के अंदर आएगा। ठीक है, और अमल से अजियत कैसे पहुंचाते थे? कि कोई ऐसा काम करते थे कि जिसके जिस काम के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी की हुई थी अबू लहब के बेटों के साथ। ठीक है, तो अबू लहब जो था ये पहले तो दुश्मन नहीं था, पहले तो बड़ा चचा जान और बड़ा जो है यानी अपने भतीजे के ऊपर फख्र करने वाला। ठीक है जी, मेरा भतीजा इतना अच्छा है, मेरा भतीजा जो है वो तो हमारी जान है, हमारी जो है वो इज्जत है, और इतना जहीन है, और इतना वो है, इतना ये है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों के खिलाफ बुलाया, शिर्क के खिलाफ बुलाया, तो अबू लहब जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और इसने फिर अपने बेटों से कहा कि इनकी बेटियों को तलाक दे दो। ठीक है, उस वक्त तक तो अल्लाह ताला का हुक्म ही नहीं आया था कि जी काफिरों से मुसलमान की शादी नहीं हो सकती, मुसलमान लड़की की शादी नहीं हो सकती, उस वक्त तो हुक्म ही नहीं आया था। इस वजह से वो अपने घरों में थी, यानी वो जो है नबी अलैहि सलाम ने उनकी शादी कर दी थी। ठीक है, अब अबू लहब जो है वो दुश्मन हो गया था, लेकिन उसने बेटों से कह करके बेटियों को तलाक दिलवाए, राइट, रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को। ठीक है, और फिर बेटों के एक बेटे ने फिर नबी अलैहिस्सलाम को यानी बुरा भला भी बहुत कहा। ठीक है, तो ये है कि अमल से अजियत पहुंचाना। तो नबी अलैहिस्सलाम से जब इस शिद्दत की कोई اذیت پہنچاتا تھا نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت خراب ہوتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے لیے پھر یعنی سزا کی دعا کرتے تھے کہ ان کے اوپر سزا کیوں نہیں آ جاتی. یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم نے تو بس وہ کہانیاں سنی ہیں نا بس, کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معاف کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یعنی کس جیسے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اسلامیات کی کتاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ایک غیر انسانی شخص بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر انسانی جذبات ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ نعوذ باللہ جیسے کہ روبوٹ قسم کی کوئی چیز ہے نا. نہیں, ایسا نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیتے جاگتے انسان تھے, جذبات اور احساسات رکھنے والے انسان تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے, انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان تھے, بہترین اخلاق رکھنے والے اور بہت زیادہ معاف کرنے والے, ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی لمٹس تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی لمٹس تھیں. کچھ ایسے لوگ تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, ایسے بھی لوگ تھے, یعنی انہوں نے اتنی زیادہ اذیت پہنچائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو, ظاہر ہے معافی تو انہوں نے مانگی بھی نہیں نا, ویسے بھی معافی مانگ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور معاف کر دیتے, لیکن معافی مانگنے کا بھی کوئی ان کا ارادہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعائیں بھی فرمائی ہیں, بد دعائیں. تو انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کی گمراہی سے غم کرتے ہیں. یہاں پر جو غم ہے نا, یہ غم وہ والا نہیں ہے کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے, یہ کاش کہ یہ ہدایت پہ آ جائے, کاش کہ یہ جنت پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, یہاں پر جو غم سے مراد ہے کہ ان کو سزا کیوں نہیں آ رہی, سزا کیوں نہیں مل رہی ان کو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں, علم ترا, کیا آپ کو نہیں معلوم, کیا آپ سمجھتے بات نہیں جانتے نہیں کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ رکھا ہے ابتلاءً, ٹھیک ہے, یعنی ابتلاء کا مطلب ہوتا ہے آزمائش, ٹیسٹ, ٹھیک ہے. تو ہم نے شیاطین کو ان کے اوپر ابتلاءً چھوڑ رکھا ہے, ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ان کو آزمانے کے لیے, کہ وہ ان کو کفر و ضلال پر خوب ابھارتے اور اکساتے رہتے ہیں. یعنی آپ جس سزا کی دعا کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر سزا آ جائے, تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں یا آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ ابھی جل کے بھسم ہو جائیں, یہ ابھی جو ہے نا وہ لوٹ پوٹ کر کے مر جائیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو سزا آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے, کہ شیاطین ان کے اوپر فری ہینڈ, ان کے اوپر شیاطین کا فری ہینڈ ہے. وہ شیاطین ان کو گناہ کے کاموں کے اوپر اور بغاوت کے کاموں کے اوپر بڑھا رہی ہیں, یہ ان کے لیے سزا ہے. لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے, آ جائے گی بعد میں, یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن ابھی آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ بھی سزا کی شکل ہے, یہ بھی سزا کی شکل ہے کہ یہ گناہ کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی سوال لکھا ہے, کسی کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی, کسی کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی, کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کی دعا قبول ہوگی, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کی دعا قبول ہوگی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی شکلیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی دعا قبول ہو بھی گئی, ٹھیک ہے, تو بھی نظر نہیں آئے گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ جی دعا قبول ہو گئی, ٹھیک ہے. تو نہیں پتا ہوتا کسی کو کہ اس کی دعا قبول ہوگی, ٹھیک ہے. پتا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 100% جو ہے نا وہ یعنی نظر آ رہا ہو, دکھائی دے رہا ہو کہ جی ہاں آپ کی دعا قبول ہوگی, آپ کو کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ, کسی قسم کے ڈاؤٹ کی ریزن نہ ہو. تو ایسا تو نہیں ہوتا کسی کے پاس, ٹھیک ہے. اعتماد ہونا, یقین ہونا کہ ہاں میری دعا اللہ تعالیٰ کیوں رد فرما دیں گے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ لفظ اردو میں استعمال کریں پتا ہونا کہ میری دعا قبول ہوگی, تو ایسا کسی کے پاس نہیں ہوتا. या हो सकता है पता नहीं आप सवाल में कुछ और पूछना चाह रही हैं और मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ, तो इस वजह से हो सकता है मेरा जवाब वो आपके सवाल के हिसाब से ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप पूछ लिए दोबारा से। तो फिर खुद ही अपने अच्छा फिर ये जो उभारते रहते हैं ना शयातीन इन 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 काफिरीन को, तो अब मजीद तफसीरन लिखते हैं कि फिर जो खुद ही अपने इख्तियार से अपने बदख्वाह के बहकावे में आ जाए उसका क्यों गम किया जाए। ठीक है, यानी ये तो बहकावे में आ गए हैं शयातीन के, तो अपने मर्जी से आए हैं ना, तो अब आप उसका गम क्यों करते हैं। अब ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर जो उसकी तफसीर की है तो वो फिर तर्जुमे से कुछ इतनी मुझे क्लियर नहीं हो रही कम अज कम। ठीक है कि भाई गम करना, सजा क्यों नहीं आ रही उसका गम करना। ठीक है, क्योंकि आगे यही है ना कि जी आप उनके लिए जल्दी अजाब होने की दरख्वास्त ना कीजिए। ठीक है, तो अब मेरी अकल थोड़ी सी कम है, समझ में कमी है, तो इस वजह से ये दोनों तर्जुमे जो है ना वो इस फकीर की छोटी सी अकल में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस वजह से आपको बता दिया कि आप ससरम जो है वो उनकी गुमराही से गम करते हैं, तो ये गम की ये हिदायत पे नहीं आ रहे इस वजह से गम कर रहे हैं। ठीक है, या ये कि इन पे सजा क्यों नहीं आ रही इस वजह से गम कर रहे हैं। तो फरमाया कि जब शयातीन इब्तिलाअन मुसल्लत होते हैं और ताजील सजाए मुस्तहक में इब्तिलाअन रहता नहीं, तो आप उनके लिए जल्दी अजाब होने की दरख्वास्त ना कीजिए। ठीक है, अब ये जरा मुश्किल अल्फाज भी बहुत मुश्किल है, ताजील सजाए मुस्तहक में इब्तिलाअन रहता नहीं। ठीक है, क्या मतलब इसका? तो इसका मतलब तो ये बनता है कि ये जो इनको अल्लाह ताला ने शयातीन इनके ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं ना, और ये शयातीन की बात मान मान करके गुनाह में और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो चाह रही हैं कि इनको अभी मार दें, ठीक है, इनके ऊपर अभी मौत आ जाए, इनके ऊपर अभी जो है वो कोई यानी खुली सजा आ जाए इनके ऊपर। ठीक है, जैसे कि चेहरा मस्ख हो जाना, जमीन में धस जाना है ना, या समंदर में डूब जाना, या ये कि बीमारी में ऐसी मुब्तला हो जाना कि बस उसके बाद ये मर ही जाए। तो अगर ऐसा मामला हो गया ना, ताजील यानी जल्दी से इनके ऊपर सजा आ गई, जल्दी से यानी इनकी हलाकत हो गई, तो जल्दी से अगर इनकी हलाकत हो जाएगी तो फिर इनका जो गुनाह में और आगे बढ़ना है और ज्यादा सजा का मुस्तहिक होना है, ये तो फिर नहीं हो सकेगा ना। ठीक है ना, यानी अल्लाह ताला के यहाँ जो ज्यादा बड़ी सजा है ना वो ये है कि इंसान को जहन्नुम में जाकर के सजा मिले। ठीक है, और जहन्नुम में सजा के लिए अल्लाह ताला ने क्या तरीका बनाया है, क्या प्रोसेस बनाया है, जहन्नुम की सजा का प्रोसेस ये है कि दुनिया में गुनाह करे। ठीक है, दुनिया में जुल्म करे। ठीक है, क्योंकि जहन्नम की सजा जो है ना वो दुनिया में जुल्म के बदले में दी जाती है। अब किसी ने अगर दुनिया में जुल्म किया ही नहीं, ठीक है, दुनिया में जो है वो बड़े बड़े गुनाह किए ही नहीं, तो जहन्नम की सजा भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, छोटे गुनाह किए तो जहन्नम की सजा भी छोटी होगी। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है ना अल्लाह ताला ढील दे रहे होते हैं, इनको ढील दे रहे होते हैं, इनको शयातीन इनको इनके यानी इनको शयातीन के हवाले कर देते हैं ताकि ये लोग जो है ना वो और बड़े बड़े गुनाह करें और बड़े बड़े गुनाह करें और इनको और ज्यादा सवाब, इनको और ज्यादा अजाब मिल सके जहन्नुम के अंदर। ठीक है, तो अगर जल्दी इनकी हलाकत हो जाएगी तो फिर बड़े बड़े गुनाह करने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़े बड़े गुनाह करने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से ना इनकी जल्दी हलाकत की आप दुआ ना कीजिए, बल्कि इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, ये करें और बना। ठीक है, तो ताजील सजाए मुस्तहक में इब्तिलाअन रही, इब्तिलाअन रहता नहीं। ठीक है, कि भाई अगर सजा आ गई इनके ऊपर तो फिर तो ये फिर इब्तिला से बाहर निकल आएंगे, इनकी इब्तिला खत्म हो जाएगी, अब तो इनकी हलाकत शुरू हो गई ना। تو آپ ان کے لیے جلدی عذاب ہونے کی درخواست نہ کیجئے، فلا تعجل علیہ، آپ جلدی نہ کیجئے ان کے اوپر، ہم ان کی باتیں جن پر سزا ہوگی خود شمار کر رہے ہیں، انما نعد لہم عدا، ہم ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، میجر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ان کو سزا ملے گی، اور وہ سزا اس روز واقع ہوگی، اب پھر یوما کر کے جو ہے وہ اس سزا والے دن کا یعنی قیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں، کہ جس روز ہم متقیوں کو رحمان کے دار النعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے، ٹھیک ہے، ونسوق المجرمین الی جہنم زردا، پیاسا ہانکیں گے اور کوئی ان کا سفارشی بھی نہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا، ہاں مگر جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے، یعنی عہدن، جو آخری آیت میں فرمایا تھا نا کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے، یعنی کوئی عہد کیا ہوا ہے رحمان کے ساتھ، کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے رحمان کے ساتھ، اور یہ کانٹریکٹ کس نے رحمان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ انبیاء و صلحاء ہیں، اور یعنی انبیاء صلحاء جب نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو وہ رحمان کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں، ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں نا، انما کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، ہاں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کیا ہے، کوئی حافظہ ہیں آپ میں سے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اس کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے، ان سے ان کے مال لے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی جانیں لے لی ہیں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مالوں اور جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کیا مطلب بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ہماری جان لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی مال لیا ہے، اور ہم اور ہمیں کوئی 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 کاغذ کے اوپر جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کر کے دیا ہے، ایسا تو نہیں ہوا نا، ہمیں تو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے جب نیکی کے کام کرتے ہیں نا، اپنے وقت کو نیکی میں خرچ کرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کو جنت کا وعدہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اب وہ وعدہ ان کے کان میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو عمل کرنا ہوتا ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ، ایک وعدہ، ایک اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر عہد کا لفظ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عہد لیا ہوا ہے، ایسے ہی نہیں بیٹھے بیٹھائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈیلنگ شروع کرتی تھی اور عہد کر لیا تھا، کانٹریکٹ کر لیا تھا، نہیں، بلکہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں نا، ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے قیامت کے دن، یہ جو اتنی شدید سزاؤں کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں جہنم کی سزا کے لیے، بلکہ ان کے اوپر تو خوب زیادہ جہنم کی سزا آئے گی، ٹھیک ہے، ہم تو ان کو اور بڑھا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ چڑھا رہے ہیں شیاطین چھوڑ چھوڑ کر کے ان کے اوپر، تاکہ یہ اور زیادہ سزا کے مستحق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں کچھ لوگوں کو، پتا نہیں سب کو تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا کہ بھائی یہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے نا، یہ کیا، یہ تو بڑا نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ بڑا یعنی بڑا بھیانک قسم کا جو ہے وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، ना कि जी उन लोगों को इतना सजा में आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हत्ता के फिर बाद में कह रहे हैं कि इनको जहन्नुम की तरफ हम हाकेंगे, और वो जो हाकेंगे ना वो भी उस कैफियत को और ज्यादा हौलनाक बनाने के लिए विरदन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो जहन्नुम की तरफ हाके जाएंगे तो ये प्यासी हालत में हाके जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो है ना बड़ी खौफनाक किस्म की पिक्चर जो है ना वो सामने आती है, और फिर जो है ना वो कुछ लोग जो हैं वो इसको क्वेश्चन करना शुरू हो जाए कि ये तो बड़ी गलत बात है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे हैं लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। आज ही इस आजिज ने एक मैसेज पढ़ा किसी का, ठीक है, और वो मैसेज अजीब व गरीब किस्म का, यानी हमारे हिसाब से अजीब व गरीब था, लेकिन उनके हिसाब से जिन्होंने वो लिखा तो वो तो जाहिर है उसको अजीब व गरीब नहीं समझेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि जी वो दोबारा मिलना भी जरा मुश्किल है क्योंकि वो फोन के बड़ी पीछे हिस्ट्री के अंदर था, वो तो कहीं से नजर आ गया दोबारा ना। तो अजीब उन्होंने ना मतलब लिखा अपने कि जी मेरा जो गॉड है ना, मेरा गॉड यानी द वन एंड द ओनली गॉड, ठीक है ना, वो तो वो है कि जो के गैर जानबदार हो, ठीक है, जो के कोई साइड्स ना लेता हो, ठीक है ना, जो के किसी को सजा ना दे, किसी को सजा ना दे, ठीक है। मेरा गॉड वो गॉड है कि जो के कोई साइड्स नहीं लेता। क्या मतलब साइड्स लेना? कि जैसे कि कुरान और हदीस इन सब के अंदर क्या है कि अल्लाह ताला टेक साइड्स, है ना भाई। अल्लाह ताला जो है वो ईमान वालों को सपोर्ट करते हैं, मानने वालों को सपोर्ट करते हैं, नेकी करने वालों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जबकि जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो मुनकिर हैं, जो गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला उनको सपोर्ट नहीं करते, राइट। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने इन साहब ने क्या लिया कि ये जो गॉड है ना, जो मुसलमान या जो या दूसरे जो रिलीजन्स हैं, राइट, ये जो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, इन लोगों ने जिस गॉड का तस्वर पेश किया है तो वो गॉड जो है ना वो तो साइड्स लेता है भाई, है ना, वो तो जानिबदार है ना, जानिब जानिब मीन साइड, ठीक है ना, वो तो जानिबदार है, गैर जानिबदार तो ना हुआ, है ना। गैर जानिबदार तो वो होता है क्योंकि कोई भी साइड ना लेता हो, है ना, कोई माने कोई ना माने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये इन्होंने अपना खुदा का तस्वर खुद से बना लिया, या हकीकत तो ये है कि शैतान ने बना दिया इनके दिल में, ठीक है। तो अब ये जो है बड़ा बड़ी यानी बज़ाहिर जो है वो बड़ा यानी अपीलिंग किस्म की बात रखती है कि हाँ जी वाकई खुदा तो इतना बड़ा है, खुदा अगर यानी जितना बड़ा खुदा के बारे में हमें कहा जाता है कि खुदा इतना बड़ा, खुदा इतना बड़ा, तो खुदा जो है ना तो वो तो अगर साइड्स लेना शुरू कर दे तो फिर तो वो खुदा ही नहीं, वो कैसा खुदा हुआ कि जो कि साइड्स लेना शुरू कर दे, है ना। कितनी कितनी बड़ी यानी अच्छी बात रखती है बज़ाहिर ये, है ना। लेकिन ये सारी अच्छाई जो है ना ये कब निकल जाएगी, ये जो तसव्वुरात हैं कि जी खुदा ऐसा होना चाहिए जो कोई साइड्स ना ले, ये एक गुब्बारा है, गुब्बारा है ना, इमेजिन करें एक बलून गुब्बारा, ठीक है। ये मुहावरा सुना है ना उर्दू जुबान के अंदर कि गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, यानी ये जो आप एक तसव्वुर करके बैठे हुए हैं ना, इस तसव्वुर के अंदर से हवा कब निकल जाएगी ये आप बताएं। अगर ये इन्होंने जो एक खुदा के बारे में एक तसव्वुर बनाया कि जी खुदा तो ऐसा खुदा होना चाहिए कि जो कि साइड्स ना ले, ठीक है ना, जो किसी को सजा ना दे, ये भी लिखा था उसके अंदर, जो किसी को सजा ना दे, ठीक है ना। ये चीजें लोग लिख रहे हैं, लोग ये चीजें जो है ना वो यानी लिखते भी हैं और फिर शेयर भी करते हैं इंटरनेट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, चैट ग्रुप्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है ना। और हमारे हम एक तो हमें भी कुछ पता नहीं, हमारे भी अच्छा खासा डामाडोल किस्म का ईमान होता है, हमारे पास भी इल्म नहीं होता, ठीक है ना। और फिर जो हमारे बच्चे हैं तो उनके पास तो और भी इल्म नहीं, और भी ईमान की मजबूती के लिए उनके पास कुछ नहीं, और हमने उनको हाथ में टैब पकड़ाए हुए होते हैं, हमने अपने बच्चों को फोन्स पकड़ाए हुए होते हैं इंटरनेट कनेक्शन के साथ, ठीक है, तो दो, दो, जब इस तरह के जो जुमले हैं जो कि अभी आपके सामने रखे हैं, ठीक है ना, कि हम ये रखे खुदा तो ऐसा होना चाहिए जो कि गैर जानिबदार हो, जो किसी को सजा ना देता हो, है ना। तो ये तो कितना दिल लुभा देने वाला जुमला है खुदा के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा जुमला जब कोई ईमान वाला पढ़ेगा तो फिर उसका क्या बनेगा भाई, है ना। ईमान वाला जिसका कि ईमान बड़ा कमजोर है, जिसके पास इल्मी कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं, वो ऐसा जुमला पढ़ेगा तो फिर क्या क्या यही कहना, हाँ अभी ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए खुदा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ईमान खत्म हो जाएगा उसका, अगर वो वाकई इससे एग्री भी कर ले कि हाँ खुदा तो ऐसा होना चाहिए जो किसी को सजा ना दे, जो किसी की साइड ना ले, तो फिर मुसलमान तो ना रहा हो वो बंदा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, एक तो ये कि हमें इंटरनेट जो है ना वो पकड़ा नहीं देना चाहिए बच्चों को उठा करके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें इन चीजों से बचने के लिए बहुत इल्म की जरूरत है, हमें समझ की जरूरत है, ताकि हमारा ईमान जो है ना वो इन चीजों को पढ़ करके एकदम से खत्म ना हो जाए, ठीक है। एक तो ये कि हमें उन जगहों पे जाना ही नहीं है कि जहां पे इस तरह की बातें हो रही हो, इंटरनेट वेबसाइट्स हो, इंटरनेट चैट ग्रुप्स हो, इंटरनेट मैसेजेस हो, हमें तो उस तरफ जाना ही नहीं है जिनको पढ़ करके हमारा ईमान खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमारी चाहत के बगैर ही कोई हमें ऐसी चीज भेज भी दे, तो कम से कम हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा इल्म इतना तो होना चाहिए ना कि हम फौरन से जो है वो इन चीजों के साथ एग्री करना शुरू हो जाए, ठीक है। ये कहलाती है ईमान की हिफाजत, ये फिक्र करना कि हम ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर के ईमान को खतरा हो, और अपने ईमान पे इतनी मेहनत करना कि वो अगर ये चीजें खुद चल के हमारे पास आ जाएं तो हमारा ईमान खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। ये कहलाती है ईमान की मेहनत, ठीक है, जो कि हम करते नहीं, हमें बल्कि पता भी नहीं कि ईमान की मेहनत होती क्या है, ठीक है। तो खैर, आपसे सवाल ये है, पहले तो सवाल को समझे, पता नहीं मैं आपको समझा भी पाया हूँ सवाल के नहीं, कि ये जो कहा ना एक साहब ने कि जी खुदा तो ऐसा होना चाहिए जो गैर जानिबदार हो, जो किसी की साइड ना लेता हो, और खुदा तो किसी को, यानी ऐसा होना चाहिए जो कि किसी को सजा ना देता हो, ठीक है। तो ये एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे में से हवा कब निकलती है आप बताएं? गुब्बारे में से हवा निकलने का मुहावरा समझ में आता है, जिसको ये मुहावरा आता होगा वो इस सवाल को भी समझ लेगा और शायद जवाब भी दे सके, गुब्बारे में से हवा निकल जाना, ठीक है। यानी ये एक तस्वुर है, और ये तस्वुर जो है ना ये उस वक्त खत्म हो जाएगा जब, हाँ एग्जैक्टली, इतनी बहुत आसान सी बात थी, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, जवाब भी इसका आसान सही है, ठीक है ना। वो ये कि जब इनके साथ कोई ज्यादती वाला मामला होता है, ठीक है ना, इनके साथ जब ज्यादती का वाला मामला होगा ना, ठीक है ना, तो उस वक्त इनके गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। ये लोग कहते फिर रहे हैं ना कि खुदा तो ऐसा होना चाहिए जो किसी को सजा ना दे, है ना, खुदा तो ऐसा होना चाहिए जो किसी की साइड ना ले, राइट। ये कब खत्म हो जाएगा, ये गुब्बारे के अंदर से हवा कब निकल जाएगी, जब इनके साथ कोई ज्यादती होगी, ठीक है ना, और ऐसी ज्यादती होगी कि इनको छट्टी का दूध याद आ जाएगा, है ना, कोई इनके साथ या इनकी औलाद के साथ शदीद किस्म का जुल्म वाला मामला कर दे, है ना, बच्चे को नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, छोटे बच्ची को अगवा करके उसके साथ जो होता है ना, जिसको कहते हैं सेक्सुअल मोलेस्टेशन, राइट, ऐसा कोई मामला करके ना बच्ची को कचरे के ड्रम में फेंक दे, ठीक है ना, जैसे कि कसूर के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर कसूर के शहर के अंदर, वो क्या नाम था उस लड़की का, बच्ची 6 साल की ज़ैनब, राइट, उसके साथ हुआ ना ये वाकया। उस तरह के कितने और वाकयात उसके बाद और हुए जो कि मीडिया के अंदर भी आए, है ना। इनकी औलाद के साथ जब कोई ऐसा मामला कर देगा ना, तो फिर उनको ये बात भूल जाएगी कि किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए भाई, है ना, खुदा तो किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए खुदा को, है ना। ये तो अभी दूसरों के ऊपर रख के बात कर रहे हैं ना, दूसरों की ज्यादतियां, दूसरों के साथ तो जुल्म होता हुआ इनको नजर ही नहीं आता, है ना, कि जी किसी दूसरे के ऊपर कितना जुल्म हुआ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, है ना। तो दूसरों का मामला तो समझ में नहीं आता ना, मामला तो तब समझ में आता है जब अपने ऊपर पड़ती है, ऐसे लोगों को उस वक्त समझ में आता है जब अपने ऊपर पड़ती है, फिर जो है ना वो हाँ सजा मिलनी चाहिए और मैं तो उसकी जान ले लूंगा, मैं तो उसके साथ ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। भाई आप इतने अच्छे हैं, इतने कंपैशनेट हैं, तो सजा की क्यों बात करते हैं? चाहे आपके साथ कोई कुछ करे या किसी और के साथ कोई कुछ करे, सजा तो नहीं होनी चाहिए, है ना? गॉड तो ऐसा होता है ना जो कि सजा ना दे, ठीक है? अपने साथ पढ़ती है ना तब तारे नजर आ जाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की बातें फिर उस वक्त खत्म होती हैं। लेकिन इनके वो पेट भरा हुए, कसम हमारी वालदा मरहुमा फरमाया करती थी, पेट भरा हुआ है ना, बिहारी जुबान में ना ये एक टर्म है, पेट भरा हुआ। क्या मतलब? कि जिसका पेट भर जाता है ना, अब उसको जो है ना वो हरी हरी सूझनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना? तो ये सब जो इंटरनेट के ऊपर बैठ करके जो इस किस्म की खराफात शेयर करते हैं, फैलाते हैं, है ना, लोगों का ईमान के साथ खेलते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनके पेट भरे हुए होते हैं, है ना? बड़ा फालतू टाइम होता है इसी किस्म की, यानी बातें करते रहते हैं फिर बैठ करके, ठीक है ना? अपना ईमान तो उनका पहले ही खत्म हो चुका होता है, दूसरों के ईमान के साथ भी खेल रहे होते हैं। तो भाई हमें इन लोगों से अपने आप को और अपनी औलाद को बचाने के लिए फिक्र करनी है, अमल करना है, मेहनत करनी है, वरना हमारी औलाद भी इन्हीं की तरह से बन जाएगी, इनकी बातें सुनेगी। औलाद के पास तो नूरानी कायदे से ज्यादा इल्म वैसे भी नहीं होता, है ना? हमने कुछ पता पढ़ाया, कुछ सिखाया, कोई कॉन्सेप्ट तो हमने अपनी औलाद के नहीं बनाए हुए होते, तो इन बातों को सुन करके उनका ईमान खत्म हो जाएगा, फिर हमारी भी जड़ कट जाएगी। जैसे काफिरों की जड़ कट गई, उसी तरीके से हमारी भी जड़ कट जाएगी, हमारी भी अगली नस्ल जो है वो फिर ईमान से महरूम हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो नबी अलैहिस्सलाम के मामले में यहाँ फरमाया जा रहा है ना कि जी आपके साथ जो इन लोगों ने ज्यादतियां करी हैं, जो जुल्म किया है ना, तो आप इनकी सजा में जल्दी ना करें, हम तो इनको सजा में और बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे जुल्म किए थे अल्लाह के महबूब के साथ, ऐसी ऐसी ज्यादतियां करी थी कि इन्होंने अपने आप पर ये सजा खुद वाजिब करी थी, ठीक है? आरिफ और मसाइल शुरू कर लेते हैं, थोड़ा वक्त है अभी, कि तउज़ुहुम अज़्ज़न, ये जो पहली आयत के अंदर आखिर के अल्फाज थे कि ये शैतान को मुसल्लत किया ताकि ये इनको बढ़ाते रहें, चढ़ाते रहें इसके अंदर। तो फरमाते हैं इसके तहत कि अरबी लुगत में लफ्ज हज़्ज़ा, अज़्ज़ा, फज़्ज़ा और हव्वा, ठीक है, ये सब एक मानी में है, यानी किसी काम के लिए उभारना और आमादा करना। तो ये चार मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन मीनिंग इनका तकरीबन एक ही है, उभारना और आमादा करना, लेकिन खिफत व शिद्दत और कमी ज्यादती के लिहाज से इनमें बाहिमी फर्क है, ठीक है? यानी इंटेंसिटी का डिफरेंस है इन सब में, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, जिसको उर्दू में कहेंगे खिफत व शिद्दत, खफीफ होना या शदीद होना, ठीक है? तो इनका फर्क है इन चारों के अंदर, लेकिन उभारना के मानी में ही है ये। तो लफ्ज अज्जा के मानी पूरी कुव्वत और तदबीर व तहरीक के जरिए किसी शख्स को किसी काम के लिए आमादा बल्कि मजबूर कर देने के, यानी इतना ज्यादा उभारना कि गोया कि बंदा मजबूर हो जाए वो काम करने के। मानी आयत की ये बने कि ये शयातीन उनको आमाल बद पर उभारते रहते हैं और उनकी खूबियां उनके दिल पर मुसल्लत कर देते हैं, खराबियों पर नजर नहीं होने देते, ठीक है? तो जब शयातीन इनके साथ ऐसा मामला कर लेते हैं ना, तो अब जो है ना ये बंदा जो है वो गुनाह करने से नहीं बच सकता, ठीक है? देखें, जैसे हमारे मशायख हमें बार बार याद दिलाते हैं कि शयातीन जो हैं, जिन्नों वाले शयातीन की जो बात होती है जब, ठीक है, जिन की शक्ल में जो शयातीन होता है ना, जिन शयातीन, तो वो किसी का हाथ पकड़ के उससे गुनाह नहीं करवा सकते, ठीक है ना? बल्कि वो सिर्फ दिमाग में आइडियाज डालते हैं, ठीक है, वसवसे हों या आइडियाज हों, ठीक है, वो दिमाग में डालते हैं, वो हाथ पकड़ के गुनाह नहीं करवा सकते, वो धक्का दे करके गुनाह नहीं करवा सकते, ठीक है? तो अब जब कोई किसी को धक्का दे ही नहीं सके, जब किसी का हाथ ही ना पकड़ सके, तो वो मजबूर कैसे कर सकता है उसको गुनाह के ऊपर ना, ठीक है? मजबूर तो भाई उस वक्त होता है ना बंदा, जबकि हम समझते हैं कि जी जब वो धक्का दे किसी को दे दे तो फिर वो मजबूरन आगे बढ़ रहा होता है, या हाथ पकड़ के कोई खींच ले तब वो मजबूरन आगे बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूरी की और भी शक्लें होती हैं, है ना, जैसे कि आपको पता है हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हम कुछ काम करने में मजबूर हो जाते हैं, हालांकि कोई हमें फिजिकली पकड़ के वो काम नहीं करवा रहा होता। तो मजबूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, राइट? ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है, ठीक है? तो शयातीन फिर वो हालात कैसे पैदा करते हैं? एक तो मुस्तकिल गुनाह के आइडिया, मुस्तकिल गुनाह की बात है, ठीक है, गुनाह के ख्यालात से उनको घेर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करते हैं कि इनके दिल से बुराई का एहसास वो खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म कर देते हैं बुराई का एहसास? कि बुराई को अच्छाई बना करके पेश करते हैं, है ना, बुराई को अच्छाई बनाकर, बुराई के अंदर जो जो नेचर है बुराई की खासियत क्या है कि वो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। बुराई को अच्छाई बना करके पेश करने का मतलब क्या होता है? वो मतलब आपको बता रहे हैं, वो ये है कि बुराई के अंदर नुकसान पहुंचाने की खासियत है, ठीक है। बुराई का अंजाम बुरा ही होगा, ठीक है, बुराई का अंजाम बुरा होना, ये अल्लाह ताला ने उसूल बना दिया है, ठीक है। हमारे हजरत उसको बाकायदा अंग्रेजी के जो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, उसके उसको इस्तेमाल करके समझाते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो मर के देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, ठीक है। तुम जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि तुम कीकर का दरख्त बो और उसके अंदर से आम का दरख्त निकल आए, नहीं, कीकर की तरह बोया है तो कीकर ही निकलेगा, और अगर तुमने किसी नारंजी का तरह बोया है यानी ऑरेंज ट्री बोया है तो ऑरेंज ही निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। तो गुनाह के अंदर क्या खासियत है? नुकसान, तकलीफ, अजियत, ठीक है। लेकिन वो जो अंजाम है गुनाह का वो अभी नजर नहीं आ रहा, वो तो मुस्तकबिल में होगा, है ना, वो तो बाद में जाकर के होगा, अभी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी ये नहीं है कि गुनाह का अंजाम फौरन से खराब नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है, वो मुस्तकबिल में जाकर के भी नजर आ सकता है, अभी भी नजर आ सकता है, इमीडिएटली भी गुनाह की सजा मिल सकती है और बहुत देर के बाद भी गुनाह की सजा मिल सकती है। शयातीन क्या करते हैं कि गुनाह जब इंसान करता है ना, तो वो उसको ये आइडिया डालते हैं कि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हें इससे फायदा होगा, इस गुनाह से तुम्हें नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हें फायदा होगा। इसी को कहा जाता है गुनाह को मुजयन करके पेश करना, ठीक है, गुनाह को अच्छा बना करके पेश करना, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि जी शराब जो है ना, वो जो कोई इंसान पिएगा तो अब शराब के अंदर से खमर निकाल दी, खमर कहते हैं कि जिस चीज को पी करके ना इंसान के होश व हवास खराब हो जाए, ठीक है। तो अब गुनाह को अच्छा बना करके पेश करने का मतलब ये नहीं है कि जी शराब जो है ना वो पिएगा तो अब इसकी अकल खराब नहीं होगी, भाई शराब को अच्छा कर दिया अकल खराब नहीं होती, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि शराब पीने से जो नुकसान होगा ना, वो उसको नुकसान बना के पेश नहीं करेंगे बल्कि वो उसको फायदा बना करके पेश करेंगे। देखो तो शराब पीने से तुम्हें फायदा हो रहा है और नुकसान को छुपा देंगे, ठीक है, नुकसान को छुपा देंगे। ये होता है गुनाह को सवाब, गुनाह को नेकी बना के पेश करना या गुनाह को फायदे वाली चीज बना के पेश करना, क्योंकि नेकी के अंदर फायदा है तो वो गुनाह को फायदा बना के पेश करेंगे, ठीक है। तो ये जब किसी इंसान के साथ हो जाता है ना कि उसको गुनाह नजर नहीं आ रहे होते, अपने गुनाह नजर नहीं आते, अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही होती, बल्कि वो अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को जो है वो अपने फायदे वाली चीज समझना शुरू कर देता है, अच्छा समझना शुरू कर देता है। तो ये जो है वो शैतान की तरफ से गोया के उसको मजबूर कर दिया गया है कि वो और गुनाह करे और गुनाह करे और गुनाह करे। इस तरह से इंसान गुनाह के अंदर आगे बढ़ता है। इसी वजह से आखिरी बात करके आज जो भी तफसील क्लास रोकेगा वो ये कि हमारे मशायख जो कि इन बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं ना, तो वो फिर सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस चीज के ऊपर करते हैं, वो कहते हैं दीदे कसूर इंसान को हासिल हो जाए, इंसान को अपनी गलतियों की समझ लग जाए, ठीक है, गलतियों की समझ लग जाए, पता लग जाए कि वो क्या गलतियां कर रहा है, ठीक है, ये दीद कसूर कहलाता है। अगर किसी इंसान को दीद कसूर हासिल नहीं है, बल्कि वो अपने कसूरों, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को नेकी समझ रहा है, फायदे वाली चीज समझ रहा है ना, तो ऐसा शख्स जो होता है वो बेसिकली शयातीन के हाथों में खेल रहा होता है और शयातीन उसके साथ तअज्जुहुम अज्जा वाला मामला कर रहे होते हैं, यानी उसको गुनाह के अंदर और बढ़ा रहे होते हैं और उभार रहे होते हैं और आगे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला से दीदे कसूर की दुआ मांगनी चाहिए, ए अल्लाह आप मुझे दीदे कसूर अता फरमा दीजिए। ये जो दुआ हम हर क्लास से पहले पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें मांगने भी की भी तौफीक अता फरमाए, यानी दिल से मांगे हम कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कं वरज़ुक्ना इत्तिबाअ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا, ठीक है। इस दुआ के अंदर ये बात भी शामिल है कि ऐ अल्लाह जो मेरी गलतियां हैं ना, जो मेरी बातिल काम है उनको मेरे सामने खोल दीजिए, जो अच्छाइयां हैं उनको भी खोल दीजिए, जो बुराइयां हैं उनको भी खोल दीजिए, ठीक है। तो ये दुआ अल्लाह ताला से हमें बहुत मांगनी चाहिए। बाकी इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह की क्लास के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। ये लफ्ज जो शैतान है ना, ये शैतान ये बड़ा अहम लफ्ज है, ये बड़ा अहम लफ्ज है, और इस वक्त जो है ना वो हम इस लफ्ज से जो है ना वो बिल्कुल नावाकिफ हो चुके हैं कि ये शैतान क्या चीज होता है, ये शैतान क्या करता है हमारे साथ, ठीक है ना, हम बिल्कुल इससे अनअवेयर हो चुके हैं, ठीक है ना। यानी ऐसी हालत है कि मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर एक वायरस फैल गया, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा है ना, ये कोरोना तो कोई नहीं फैला हुआ है, तो सब आप बेवकूफ बना रहे हैं सारी दुनिया को, ठीक है, ठीक है बीमारी है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी फैली हुई बीमारी नहीं है जैसे कि बना के पेश कह रहा था, ठीक है। लेकिन इमेजिन करें कि वाकई एक बीमारी, एक वायरस हो, ठीक है, जो कि सारी दुनिया में फैला हुआ है और जिसकी वजह से लोग जो है ना वो बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, और यानी हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, है ना। सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन वाले कराची के अंदर वो ना मर रहे हो, लाहौर के अंदर सिर्फ जो है वो गुलबर्ग और डिफेंस वाले ना मर रहे हो, और इंडिया के अंदर जो अमीर कबीर इलाके हैं सिर्फ वहां के लोग ना मर रहे हो, बल्कि स्लम्स के अंदर लोग मर रहे हो, है ना। ये चीज तो हम भूल जाते हैं कि जी स्लम्स में क्यों नहीं मरे लोग, कच्ची आबादी में, झोपड़ियों में जो है हजारों की तादाद में लोग क्यों नहीं मरे, है ना। अस्पताल वहां तो अस्पताल ही नहीं होते, स्लम्स के अंदर तो अस्पताल ही नहीं होते, वहां पर तो सिर्फ मियत घर होते हैं, मियत खाने होते हैं, मियत खाने क्यों नहीं भर गए, है ना। अगर भरे भी, अगर कुछ भरे भी थोड़ा बहुत, इंडिया से इस किस्म की वीडियोज आई थी, ठीक है ना, तो वो खाली एक महीने के लिए क्यों भरे, है ना, ये तो डेढ़ साल से चल रहा है, तो डेढ़ साल के अंदर तो फिर लाखों लोग मरने चाहिए थे, है ना, कहाँ गए लाखों लोग, अमीरों में मरे, अमेरिका में ज्यादा मर गए, इंडिया के अंदर कलकत्ता के अंदर और बम्बई के अंदर जो है वो लाखों नहीं मरे, अब कराची के अंदर, लाहौर के अंदर और कच्ची गरीब इलाकों में लाखों नहीं मरे, है? आगा खान हॉस्पिटल हॉस्पिटल भर जाता था और झोपड़ियां नहीं भरती थी अमवात से। अजीब अजीब पेंडेमिक है भाई ये, जब इसको स्कैमडेमिक कहते हैं। लेकिन बात समझाने की खातिर जो कहना चाह रहा था याजिद, वो ये कि वाकई कोई ऐसा वायरस आ जाए जिसकी वजह से लाखों मर रहे हों, ठीक है, लेकिन दुनिया के लोग उस वायरस से वाकिफ ही ना हो, भूल जाए कि जी ये वायरस है ना, पता ही ना हो कि जी ये क्या वायरस है, ये क्या करता है, ये कैसे इतने सारे लोगों को मार रहा है, ये क्यों इतने सारे लोग मर रहे हैं, पता ही ना हो उसका, तो फिर क्या होगा है? फिर उस वायरस की तबाहकारियां ना तो आप कोई एहतियाती तदाबीर कर सकेंगे उससे बचने के लिए, ना आप जो है वो कोई प्लानिंग करेंगे कि जी हम क्या करें कि जिसकी वजह से जो है ये वायरस खत्म हो जाए, ना जो है वो उसकी वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं उन बीमारों का इलाज कैसे करना है ना, ना आप इलाज के लिए कुछ कर सकेंगे, तो ये वायरस जो है वो कितना डेडली होगा, है ना, कितना डेडली होगा, ठीक है, क्या उससे तबाहकारियां दुनिया के अंदर फैलेंगी, है ना, करोड़ों लोग मर जाएंगे इस वायरस की वजह से, जब आप उस वायरस से बिल्कुल ही नावाकिफ हो जाए, राइट, हाउ टू डील विद इट, हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम दैट वायरस, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट वायरस, ठीक है, बिल्कुल यही मामला शैतान का है, बिल्कुल यही मामला शैतान का है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों शैतान की वजह से रूहानी मौत मर रहे हैं और मर चुके हैं, करोड़ों इंसान रूहानी मौत मर चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का निवाला बन चुके हैं, और हम शैतान से वाकिफ ही नहीं कि शैतान है क्या चीज, ये शैतान करता क्या है, इस शैतान के असर से अपने आप को बचाना कैसे है, अगर किसी के ऊपर असर हो जाए इस शैतान का तो अपने आप को उस असर से निकालना कैसे है, इलाज कैसे करना है ना, चंद नफूस के अलावा कोई इससे वाकिफ नहीं है, तो अब इसकी तबाहकारियों का क्या हाल है ना, वी कैन ओनली इमेजिन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, वा आखिर दुआ अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।